कौन से स्टीमर में बैठे हैं? शंकर चाप जहाज, जिस चाप शरीर रूपी धनुष का आधार लेने के कारण तुम बच्चों की बुद्धि में पुरुषार्थ सहज हो जाता है, औरों की बुद्धि में पुरुषार्थ सहज नहीं हो पाता। तो जो ब्राह्मण बने हैं वो स्टीमर में बैठे हैं, स्टीमर तो बहुत बड़ा है, इसकी तो शास्त्रों में भी बात आई है। शास्त्रों में स्टीमर का नाम क्या दिया है? चंद्रकांत वेदांत। ये नाम क्यों दिया गया है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की कांति भरी हुई है उसमें। क्या? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो माँ का पार्ट बजाने वाली सोल है, सारे सृष्टि रूपी ड्रामा की हीरोइन का पार्ट बजाने वाली सोल है, वो हीरोइन के आत्मा की जो कांति है, शोभा है, वो उसमें भरी हुई है। किसमें? चंद्रकांत वेदांत जहाज में। क्या निशानी दिखाई गई है? निशानी क्या दिखाई गई है? शंकर के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं। चंद्रकांत किसका नाम देते हैं? चंद्रशेखर किसका नाम देते हैं? शंकर का नाम चंद्रशेखर है ना, तो चंद्रमा को सर पर धारण किया हुआ है ना, ये उस जहाज की शोभा है। अगर चंद्रमा न हो, और वो भी अधूरा, संपूर्ण चंद्रमा नहीं, अगर वो अधूरा चंद्रमा भी न हो तो उसकी कांति नहीं होगी, शोभा नहीं होगी। तो बताया, इस चंद्रकांत वेदांत जहाज की शास्त्रों में बात है, कोई स्टीमर से उतर करके खान पान में लग जाते हैं। क्या यहां भी ऐसे पुरुषार्थी हैं? कहते हैं कि बाबा के यहां तो खिचड़ी मिलती है। बॉसी सरेंडर ब्रह्मा कुमारी एडवांस कोर्स ले लेती है, भट्टी भी करे आती है, फिर इतनी हिम्मत नहीं कर पाते। कितनी? कि 36 प्रकार के भोगों को त्याग करके खिचड़ी खाना शुरू करें। तो कोई कोई स्टीमर में से उतर जाते हैं, खान पान में लग जाते हैं, कोई ऐसे हैं जो नौकरी धंधा करने लग पड़ते हैं, कहते हैं हम तो नौकरी करेंगे, कुछ अच्छा खाएंगे पिएंगे, शरीर बनेगा तो पुरुषार्थी भी हो सकेगा। यहां तो खिचड़ी खाने को मिलती है, सादा कपड़े मिलते हैं, सादा सा मकान मिलता है रहने के लिए, कुछ जिंदगी में मजा नहीं। तो खान पान में लग जाते हैं तो बेचारे रह जाते हैं, जहाज आगे बढ़ जाता है और वो बीच में ही रह जाते हैं। तो ये भी रेस है पुरुषार्थ की, स्टीमर तो चलता ही रहता है। क्या ये स्टीमर भाग जाने वालों के लिए, रुक जाने वालों के लिए रुकने वाला नहीं है? बुद्धि का योग ठीक रहे तो नैया चलती रहे, नहीं तो खड़ी हो जाती है। क्या कहा? अगर बैठने वालों की बुद्धि का योग उस चंद्रकांत वेदांत जहाज का जो खिवैया है उसके साथ जुड़ी रहे तो रिजल्ट क्या होगा? जीवन की नैया, पुरुषार्थ की नैया सहज रूप से चलती रहेगी। पुरुषार्थ कैसा होता रहेगा? सहज राजयोग हो जाएगा। कठिनाई की इसमें बात ही नहीं, ये वो योग नहीं है जिसमें हाथ पांव टेढ़े उल्टे करने पड़े। क्या आज की दुनिया में ऐसा योग भी तो सिखाते हैं? क्या कहते हैं? योगासन। कितना भी समझाओ लेकिन लायक बन नहीं सकते, भाग जाते हैं। ऊंच पद पाने की तमन्ना नहीं है, राजाई के लायक थोड़े ही है। क्या कहा? ये राजयोग है, परमात्मा आकर के राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता है, यूनिवर्सिटी खोलता है तो ऊंचे से ऊंचे बाप के द्वारा ऊंचे ऊंची यूनिवर्सिटी खोली गई है तो इसमें कुछ प्राप्ति भी तो होगी। क्या प्राप्ति है? वो कॉलेज खोले जाते हैं, यूनिवर्सिटीज खोली जाती हैं, इंजीनियर बनाए जाते हैं, डॉक्टर्स बनाए जाते हैं, वकील बनाए जाते हैं, भगवान आकर के यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो फालतू खोलते हैं क्या? अरे कुछ तो सैंपल निकालते होंगे। किस बात के सैंपल निकालते हैं? राजयोग सिखाकर जन्म जन्मांतर के राजाएं निकालते हैं। इन राजाओं को जो हिस्ट्री में गाए हुए हैं, देश देशांतर में छोटे बड़े राजाएं हुए हैं, महाराजाएं हुए हैं, उन राजाओं को राजाई करने की कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई? कब ट्रेनिंग दी? कभी तो ट्रेनिंग दी होगी, किसी ने तो ट्रेनिंग दी होगी। वो सुप्रीम सोल बाप है। जब सब धर्म पिताएं इस दुनिया में आकर लोढ़े खा जाते हैं, खुद भी नीचे गिरते जाते हैं, दुनिया भी नीचे गिरती जाती है, उनके धर्म के फॉलोअर्स भी नीचे गिरते जाते हैं, इंतहा हो जाती है, तब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आता है, हर धर्म से श्रेष्ठ आत्माओं को चुनता है और उनको राजयोग सिखाता है। जो राजयोग सीखते हैं वो राजाई के लायक बन जाते हैं, जन्म जन्मांतर के राजाएं प्रसिद्ध हो जाते हैं। शास्त्रों में गाया हुआ है, हिस्ट्री में भी उन राजाओं के नाम आए हुए हैं। हिस्ट्री मनुष्यों की लिखी हुई है और शास्त्र देवात्माओं के लिखे हुए। जो देवताएं थे वही देवताएं द्वापर कलयुग में आकर के मनुष्य बन जाते हैं और वो मनुष्य बैठ करके शास्त्र लिखते हैं। इसलिए बाबा ने बोला है कि शास्त्रों में बैठ करके अपनी अपनी जीवन कहानी लिखी है। मान राम वाली आत्मा ने रामायण लिख दी, कृष्ण वाली आत्मा ने सूर्य सागर लिख दिया। तो बोला जो राजाई के लायक नहीं बनते हैं तो ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ भी नहीं करते। 16108 के माला में जाना, उनसे तो प्रजा में बड़े अच्छे धनवान होते हैं। क्या कहा? ये बाबा की थर्ड क्लास प्रजा है, वो थर्ड क्लास माला है। कौन सी? 16108 की माला। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली आत्माएं हैं जो सिर्फ प्रिंस प्रिंसेस बनकर के रह जाती हैं, राजा राजा नहीं बनती। जैसे मान लो शाहजहां के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। राजाई किसने पाई? किसने पाई? औरंगजेब ने। बाकी 3 क्या हुए? बड़े बच्चे ने भी राजाई कुछ समय की, लेकिन शाहजहां ऐसा चालबाज निकला कि उन तीनों को मौत के घाट उतरवा दिया, खुद राजाई पर बैठ गया। तो कहेंगे कि शाहजहां का उस नालायक औरंगजेब बच्चे ने, जिसने अपने बाप को जेल में डलवाई दिया, पूरी श्रीमत पर चल करके राजाई ली। राजाई तो उसने ली, लेकिन बाप की श्रीमत पर चल करके ली या मनमत से और मनुष्यों की मत पर चल करके ली? जरूर उसने अपनी मनमत भिड़ाई। बाप जैसे जैसे श्रीमत पर चला करके पुरुषार्थ कराना चाहता है, वैसा पुरुषार्थ उस राजा ने नहीं किया। बाप तो ऊंचते ऊंचे पुरुषार्थ कराते, जिसमें ग्लानि की कोई बात नहीं पैदा हो सकती। बोला 16000 की माला में जाना, उनसे तो प्रजा में बड़े बड़े अच्छे धनवान होते हैं। ऐसी आत्माएं वही हैं जो सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग में ऊंच पद माना राजाई पद नहीं प्राप्त कर सकती। वो द्वापर कलयुग में आकर के राजाएं बनेंगे, दुष्ट राजाएं, लेकिन सतयुग त्रेता के रामकृष्ण जैसे श्रेष्ठ महाराजा नहीं बन सकते। तो बोला कि 16108 की माला में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, सतयुग त्रेता में 16108 प्रिंस प्रिंसेस तो हो जाएंगे, लेकिन वो राजा ही नहीं पाएंगे, उनको राजा ही मिलेगी आकर के लास्ट में, द्वापर में या कलयुग में। आज की दुनिया की राजाई मिनिस्टर्स गद्दी पे बैठे हुए हैं, ये राजाई है या कांटों का ताज है? कितना भ्रष्टाचार करके पैसा कमाते चले जा रहे हैं, खून पी रहे हैं जैसे पब्लिक का। बाबा कहते हैं इनका सब पैसा नकामा बेकार चला जाएगा, विनाश में सब स्वाहा हो जाएगा। किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए माना सरकार इनकम टैक्स में ले लेगी, किसकी ले गई चोटा और किसकी आग जलाए, ये चार अंजाम हो जाएंगे। ये राजाई से जो ये बड़े बड़े बनते चले जा रहे हैं, इनको प्राप्ति कुछ नहीं होने वाली है। ये अल्पकाल की राजाई है, ये छोटे अल्पकाल की राजाई पाने वाले वही 16000 की लिस्ट वाले हैं। कौन? जो नाम मात्र के लिए प्रिंस प्रिंसेस बन करके रह जाते हैं, राजा नहीं बनते। उन्होंने पुरुषार्थ किया है, लेकिन नीच कोटि का पुरुषार्थ किया। कैसी नीच कोटि? परमात्मा बाप के बन गए हैं, एक बार सरेंडर हो गए हैं, और सरेंडर होने के बाद परमात्मा बाप को धोखा दिया, भाग गए। जैसा पुरुषार्थ करना चाहिए वैसा नहीं किया, तो ऐसी आत्माएं फिर जन्म जन्मांतर दास दासी का पद पाती। इसलिए बोला कि दास दासी बनने से तो अच्छा है प्रजा में जाकर के साहूकार बने, जो यहां आकर के ज्ञान सुन लेते हैं, अपने घर में जाकर के बैठते हैं, सरेंडर नहीं होते, धन दान करते रहते हैं ईश्वरीय सेवा में, वो भी अच्छे अच्छे साहूकार बन जाते हैं बदले। तो 16108 की माला है थर्ड क्लास माला, सेकंड क्लास माला कौन सी है? 1008, जो ब्रह्मा की भुजाएं गाई हुई। कितनी भुजाएं गाई हुई है शास्त्रों में? 1000 भुजाएं गाई हुई। कहते हैं भगवान के 1000 हाथ हैं। हाथ माना सहयोगी बच्चे। कहते हैं ना हमारी दाहिनी भुजा टूट गई, भाई ने शरीर छोड़ दिया। तो भाई ने शरीर छोड़ दिया माना सहयोगी चला गया। सहयोगी को भुजा दिखाया जाता है, देवियों को ढेर सारी भुजाएं दिखाई जाती हैं। विष्णु को कितनी भुजाएं दिखाई है? 4 भुजाएं दिखाई है। रावण को कितनी भुजाएं दिखाई है? 20 भुजाएं दिखाई है। तो भुजा माने सहयोगी। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होते हैं जिनको ढेर की ढेर भुजाएं हो। तो बताया कि प्रजा में भी बड़े अच्छे अच्छे धनवान होते हैं, यहां भी गवर्नमेंट धर्मानों से कर्जा उठाती है। क्या कहा? सतयुग त्रेता द्वापर युग में ही नहीं कर्जा उठाती है गवर्नमेंट, पहले युग में तो कर्जा उठाने की बात ही नहीं। पहले युग के पहले जन्म में तो ऊंच होते हैं, वो ऊंच जो होंगे, ऊंच पुरुषार्थी होंगे, वो कर्जा नहीं उठा सकते। ये तो सतयुग के लास्ट जन्म का जो तमो प्रधान पीरियड होता है, वो अंतिम राजा होता है, जो साहूकार से कर्जा उठाता है। कौन से साहूकार से? राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। जिए नगरी बसेदाता धर्म का उपकार है, माने आखिरी जन्म में राम की सोल। क्या? आखिरी जन्म में राम की सोल जो जाकर के प्रजा वर्ग में साहूकार बनती है। इतना बड़ा साहूकार बनती है सतयुग के अंत में कि आखिरी जो नारायण होता है वो नारायण की सारी राजाई की गद्दी उसे भरपाई करनी पड़ती है, और अपनी राजाई ट्रांसफर राम के लिए करनी पड़ती है। सत्युग में नारायण का राज्य होता है, नारायण की गद्दी चलती है। जैसे अंग्रेजों में किंग एडवर्ड फर्स्ट, किंग एडवर्ड सेकंड, किंग एडवर्ड थर्ड, राजा ही चली है ना डायनेस्टी, जैसे मुगलों की डायनेस्टी चली है, तो ऐसे ही सत्युग में नारायण की डायनेस्टी चली। आठ नारायण हुए, आठवां नारायण कर्जे में इतना डूब जाता है तो उसको अपनी सारी राजाई राम साहूकार के हाथ में सौंपनी पड़ती है। राम त्रेता के आदमी राजा बन जाता है और उनकी राजाई डूब जाती है। किनकी? नारायण का राज्य खलास हो जाता है। तो ये कर्जा लेकर के राजाई चलाने वाले राजा सत्युग त्रेता में ही नहीं होते थे। आज भी गवर्नमेंट में बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं जो बड़े बड़े पूंजीपतियों से कर्जा लेते रहते हैं, कर्जा लेकर के अपनी पार्टी बनाते हैं। फिर ऐसी पार्टी जो कर्जा लेकर के बनेगी और गद्दी पर पहुंचाएगी तो उसका दबाव नहीं पड़ेगा। किस बात का दबाव? कि ऐसा कानून बनाना चाहिए, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। तो सत्ता वास्तव में मिनिस्टर्स के हाथ में है या पूंजीपतियों के हाथ में? पूंजीपतियों के हाथ में सारी सत्ता हो गई। नाम मात्र के लिए कहने के लिए कहा जाता है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, इसलिए बाबा ने बोला ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है बेकायदे राज्य। असली राज्य क्या है? जो परमात्मा बाप आकर के राजा ही स्थापन करता है सत्युग और त्रेता की, वो राजा ही सबसे श्रेष्ठ राजा है जो राम और कृष्ण की डायनेस्टी में चलती है। नारायण की डायनेस्टी, राम की डायनेस्टी, वो राजा ही थी। और अब अंत में आकर के जो राजाएं बन रहे हैं वो राजा ही नहीं है, गधाई है। वजन ढो रहे हैं, अपने मन को खुश करने के लिए पैसा कमा रहे हैं। ये घोटाला, वो घोटाला, रोज रोज घोटाले प्रत्यक्ष होते रहते हैं। अपने मन का धन कमा करके विदेशों में जमा कर रहे हैं, लेकिन ये धन उनके काम नहीं आएगा। इसलिए बोला कि 16108 की माला में आकर के दास दासी बनना, इससे कोई फायदा नहीं। और 16108 की माला में आते वो ही हैं जो समर्पित होकर के परमात्मा बाप के सामने समर्पित होकर के फिर भाग जाते हैं, पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं और जनरल पब्लिक का आधार ले लेते हैं, तो जाकर के प्रजा में दास दासी बनेंगे। बाबा कहते हैं इससे तो अच्छा ये है कि मैं सरेंडर मत हो, सरेंडर हुए और अपनी मनमत पर चले, सर को भगवान के अंडर नहीं किया तो सरेंडर होने से कोई फायदा नहीं। क्या करना है? इससे तो अच्छा ये है कि सरेंडर न हो, बिना सरेंडर हुए ही घरगस्त में रह करके पुरुषार्थ करते रहे, कना दाना यज्ञ में लगाते रहे तो ऊंचे राजा बन जाएंगे, वो ऊंचे साहूकार बन जाएंगे। और साहूकारों के घरों में भी ऐसा माहौल होता है कि एक मच्छी, एक मक्खी और मच्छर भी दिखाई नहीं देगा उनके घर में, जैसे राजाओं का महल होता है। साहूकारों के घरों में भी ढेर दास दासियां होते हैं। कितना सुख शांति लगी पड़ी है, टाटा बिरला डालमिया इनके परिवारों में जाके देख लो आखिरी जन्म में भी। तो बोला 16000 के जो मणके हैं, जो बड़े बड़े पुराने मंदिरों में रखी हुई है माला, उसमें जाने से तो अच्छा साहूकार बनने का पुरुषार्थ करें, राजा बनने का पुरुषार्थ न करें। राजा बनने का पुरुषार्थ करने से पुरुषार्थ तो कोई शिफ्ट वाला करना पड़ेगा। क्या शिफ्ट होनी चाहिए उसमें? जैसे एक चलावे वैसे चले, एक बाप दूसरा न कोई। इसलिए बोला है एक से ज्ञान सुना तो अब व्यभिचारी ज्ञान कहा जाएगा और अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान कहा जाएगा। जैसे वैश्या होती है वो एक के डायरेक्शन पर चलती है या अनेकों के डायरेक्शन पर चलती है, तो अनेकों के डायरेक्शन पर उसको चलना पड़ता है। तो जो अनेकों के डायरेक्शन पर चलेगी उस वैश्यालय की दुनिया में फिर मारा मारी नहीं होगी तो क्या होगा, दुख दर्द की दुनिया नहीं बनेगी तो क्या बनेगी। इसलिए बाबा ने बोला कि बाप का बनने में प्राप्ति भी बहुत है, चाहे तो ऊंचे ऊंचे महाराजा बन सकते हैं, सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। हिटलर ने, नेपोलियन ने, मुसोलिनी ने मेहनत तो बहुत की सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने की, लेकिन बाहुबल से कोई भी विश्व के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, ये कायदा ही नहीं है। ये तो योग बल है जो परमात्मा बाप आकर के सिखाता है, जिस योग बल से विश्व का बादशाह कोई बन सकता है। जो गायन है शंकर के लिए, हर हर महादेव गंगे काशी विश्वनाथ गंगे, सारे विश्व का नाथ कहा जाता है, सारे विश्व की नाक में नकेल डालने वाला नाथ है, माने सारे विश्व को कंट्रोल कर सकता है। काहे से? योग बल। तो योग बल तो है, लेकिन एक के साथ चाहिए। बुद्धि योग एक के साथ है, एक के डायरेक्शन पर चलते हैं तो बहुत प्राप्ति है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तो हैं मेरे बहुत, लेकिन आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार, ये चार शिफ्ट वाले बच्चे बहुत कम, अपनी मनमत चलाने में बहुत माहिर हैं। ओम शांति।